जो मैंने शुरू किया है प्रवचन निर्देश का। मध्यात्माओं, प्रवचन निर्देश का में मुख्य रूप से देखा जाए तो चार विषय हैं। सुदम्य अवसंतो ही खल सम्य न भयोदा महाजमावीरे न, जैसा कि गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, बंधम मोक्षम आदि गति आगति केवल उत्पाद बंध मोक्ष आदि ये सब भगवान की वाणी से प्राप्त है। और उसी परंपरा के अनुसार षटखंडागम ग्रंथ, षटखंडागम ग्रंथ जो है लिपिबद्ध जो हुआ विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। और कसाय पाहुड़ ग्रंथ, वेजदोष पाहुड़ भी जिसे कहते हैं, ये ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ है। और इनकी टीका धवला जय धवला नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। और आचार्य श्री सांसाज महाराज जी की कृपा प्रसाद से इनका हिंदी अनुवाद आदि होकर के और ये प्रकाशित हो चुके हैं। और भी किन्हीं किन्हीं लोगों ने उनका कन्नड़ आदि में भी अनुवाद किया है। मुझे भी इस षटखंडागम ग्रंथ पर सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, गुरु की कृपा प्रसाद से, सरस्वती देवी के अनुकंपा से। उसमें है धवला पुस्तक 6 और उस पुस्तक में छठी पुस्तक में सम्यक दर्शन के कारणों का, सम्यक दर्शन ही महत्वपूर्ण है। जैसे मोक्ष मार्ग में आचार्य ने कहा है नान दर्शन चरितम चरोचेमी, गौतम स्वामी के शब्दों में है कि ज्ञान दर्शन और चरित की हम रुचि करते हैं, श्रद्धा करते हैं आदि, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मिथ्या चरित को छोड़ते हैं। जीवन में महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन, वो किन्हें प्राप्त होता है। पहले तो जो है अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादिकाल से जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व में ही है शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं आदि, अनादि मिथ्या दृष्टि, भवि जीव हो भविज हो, अभवि को सम्यक दर्शन की बात ही नहीं है, जो कभी मोक्ष नहीं जा सकते। भवि जीव हो, सैनी हो, मन सहित हो, पंचेंद्री हो और पर्याप्त हो, वे चारों गतियों के जीव प्रथमोपशम सम्यक तो पहले ग्रहण करते हैं। प्रथमोपशम सम्यक, सम्यक के तीन भेद हैं, प्रथमोपशम, क्षयोपशम और क्षायिक। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है प्रथमोपशम। आचार्य ने कहा चारों गतियों में संभव है, पंचेंद्री ही होना चाहिए। तिरंचों में नारकी तो पंचेंद्री ही है, देव पंचेंद्री ही है और मनुष्य पंचेंद्री ही है, उसे भी सैनी मनुष्य भव्य पर्याप्त। 8 वर्ष की उम्र में ही, 8 वर्ष के बाद ही समय दर्शन की योग्यता आती है प्राप्त करने की। तो धवला पुस्तक की 6 पुस्तक में वर्णन इसका आया है, वहां से हम आपको ले चलेंगे सम्यक के कारणों को, सम्यक दर्शन के कारण क्या है, सम्यक की उत्पत्ति के कारण मूल में क्या है। पहले तो प्रवचन निर्देश का में मुख्य रूप से मैंने इसी को लिया है, यद्यपि ये बात ध्यान में रखें कि प्रवचन कर्ता, प्रवचन का विषय आदि ये भी समझने के हैं। मुख्य रूप से प्रवचनकर्ता कौन है, मुख्य रूप से तो प्रवचनकर्ता भगवान, अर्थकर्ता तीर्थंकर महावीर स्वामी, और ग्रंथकर्ता मुख्य रूप से गौतम स्वामी गणधर देव, जो द्वारसांग रूप में सुत का तीर्थ को निबद्ध करते हैं। लिखित रूप में द्वारसांग कभी संभव ही नहीं है, परंपरागत जो आचार्य हुए हैं उन्होंने लिपिबद्ध किया है तो उसका अंश है। तो ये जो षटखंडागम ग्रंथ है वो 11 अंक 14 पूर्व में से जो द्वितीय पूर्व है, अग्रणी है, ध्यान रखें आप, 11 अंक 14 पूर्व में से जो द्वितीय पूर्व अग्रणी है उसके कुछ अंश का ज्ञान श्री धर्मसेनाचार्य को था। धर्मसेनाचार्य ने अपना ज्ञान दो शिष्यों को दिया पुष्पदंत भूत बलि को, और उन पुष्पदंत भूत बलि ने ही, आचार्य पुष्पदंत भूत बलि ने ही इन सूत्रों को रच करके, षटखंडागम के सूत्रों को रच करके और ग्रंथ दिए, और जिन पर टीका हुई है, अनेकों टीकाएं हुई हैं, लेकिन वर्तमान में धवला टीका नाम से उपलब्धि है और उसी का हिंदी अनुवाद होकर प्रकाशित हुआ है। उसी के आधार को लेकर के ये धवला पुस्तक 16 भागों में विभक्त हो गई है। आप ध्यान में रखेंगे मूल विषय धवला यानी षटखंडागम ग्रंथ है, उसकी धवला टीका, और वो धवला टीका होकर 16 ग्रंथों में निबद्ध है। उसकी छठी पुस्तक में धवला पुस्तक 6 में सम्यक की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन बहुत ही सुंदर रोमांचकारी है, बहुत ही अच्छा है। और ये वर्णन श्री कुंदकुन स्वामी ने मूलाचार आदि में भी लिया है। तो इन्हीं ग्रंथों का आधार लेकर के और मैंने प्रवचन निर्देशिका में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारणों को लिया है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण, सम्यक दर्शन का लक्षण, पुनश्च इसी पर प्रकाश डाला है विशेष रूप से निमित्त उपादान आदि बाद में। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण में चारों गतियों में जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। चारों गतियों में नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति और देव गति, ये चार गति हैं। चार गति में सर्वप्रथम धवला टीका में आचार्य श्री पुष्पदंत ने, भूतबली आचार्य ने, आचार्य श्री भूतबली आचार्य ने सर्वप्रथम सूत्रों की रचना जो की है, उसमें उसी के अंश को, सार को मैं बता रही हूँ आपको। नारकी मिथ्या दृष्टि, कई नारकी मिथ्या दृष्टि जीव है, तो नरक में भी 3 नरक तक व्यवस्था अलग है, 4th नरक से 7th नरक तक व्यवस्था थोड़ी अलग है, क्योंकि 3 नरक तक कोई भी देव नारकियों को संबोधन करने के लिए जा सकते हैं। 3 नरक तक, इसके आगे जाने का विधान नहीं है, आगे नहीं जा सकते। तो नारकी मिथ्यादृष्टि जीव 3 कारणों से सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकते हैं। 3 कारणों से उनके सम्यक की उत्पत्ति होती है, सभी के नहीं होती, ध्यान रखें, किन्हीं किन्हीं भावी जीव के। कोई भावी जीव है, निकट संसारी है, ऐसे किसी जीव के ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो ये प्रथम सम्यक दर्शन, प्रथम सम्यक दर्शन, इसकी उत्पत्ति के कारण 3 है नारकी के। वो 3 कौन से हैं उनको बताते हैं। कितने नारकी जीव जाति स्मरण से, कोई कोई नारकी जीव धर्मोपदेश स्मरण करके, और कितने नारकी जीव वेदना से अत्यंत घबरा करके, वेदना से अत्यंत पीड़ित होकर के और समय दर्शन प्रकट कर सकते हैं। ये 3 कारण नारकी में पाए जा सकते हैं। कोई भावी जीव के ही, सभी के नहीं, असंख्यात नारकी हैं, असंख्यात नारकियों में से कोई नारकी नरक के जीव जाति स्मरण से समय दर्शन प्रकट कर सकते हैं, कोई धर्मोपदेश सुन करके, और कोई वेदना से अभिभूत होकर के। वेदना से, अत्यधिक वेदना से, वेदना तो सबको है, लेकिन अत्यधिक वेदना से कोई घबराते हैं तो चिंतन करते हैं, अरे मैंने गुरुओं के मना करने पर भी ऐसा पाप किया, उसके फलस्वरूप नरक में आ गया आदि, तो वो सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं, उनके प्रसव सब सम्यक हो जाता है। धर्मोपदेश सुन करके सम्यक हो जावे तो ठीक, एक शंका हो गई, किंतु जाति स्मरण कारण समझ में नहीं आया, क्योंकि सभी नारकी जीवों के अब विभंगावधि ज्ञान है ही है, तो जाति स्मरण तो उसे सहज है, विभंगावधि ज्ञान अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान में कुअवधि ज्ञान का नाम है विभंगावधि। जब तक कि सम्यक दर्शन प्रकट न हो तब तक के ज्ञान को विभंगावधि कहते हैं, कुअवधि कहते हैं, और जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है तब उनके ज्ञान को अवधिक ज्ञान कहते हैं, ध्यान रखें। लेकिन नरक में तीन ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत, अवधि। उसमें जब तक सम्यक तो नहीं तब तक कुमति, कुश्रुत, कुअवधि कहलाइए। और सम्यक दर्शन होने के बाद वही मति ज्ञान, सुमति ज्ञान सुरूप में है, श्रुत ज्ञान और अवधिक ज्ञान। हमें और आपको सभी को दो ज्ञान है, ध्यान रखें, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दो ज्ञान सभी संसारी प्राणियों में है, और जब तक सम्यक नहीं होता है वो कुमति कुश्रुत कहलाते हैं। तो धर्मोपदेश सुनकर के सम्यक हो जावे सो तो ठीक। एक प्रश्न आता है कि कोई देव ने जाकर वहां संबोधित किया, धर्मोपदेश दिया, धर्मोपदेश से सम्यक तो प्रकट हो गया, लेकिन जाति स्मरण से सम्यक दर्शन कैसे होगा? क्योंकि सभी नारकी जीव विभंग ज्ञान के द्वारा, कुअधि ज्ञान के द्वारा एक, दो या तीन आदि भावों को जानते ही हैं, जान ही लेते हैं, इसलिए सभी के जाति स्मरण होता है। पुनः सम्यक कैसे प्रकट होगा उनके सभी के हो जाएगा, एक प्रश्न आया, तो उसका समाधान देते हैं, ऐसी बात नहीं है। सामान्य रूप से भाव स्मरण द्वारा सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती है। सामान्य रूप से सब जान लेते हैं कि मैं किस पर्याय से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। मनुष्य अथवा तिर्यंच ही नरक में जाते हैं, ध्यान रखिए, देव नरक में नहीं जाएंगे और नारकी मलकर नरक में नहीं जाएंगे, तो मनुष्य अथवा तिर्यंच ही नरक में जाते हैं। तो उनको वहाँ जाते ही मालूम हो जाता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस पर्याय से आया हूँ। तो भाव स्मरण के द्वारा सम्यक की उत्पत्ति कैसे होगी? तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि धर्म बुद्धि से कुछ अनुष्ठान किए थे और वास्तविक धर्म रूप न होने से उनका फल नहीं मिल पाया, ऐसा जानकर किसी को सम्यक उत्पन्न हो गया हो तो वो जाति स्मरण निमित्तक कहलाता है। इस प्रकार की बुद्धि सभी नारकी जीवों में नहीं होती है, क्योंकि तीव्र मिथ्यात् के उदय से बसी थी विभूति नारकी पूर्वभावों का स्मरण करके और सम्यक की का उत्पत्ति में नहीं बनते हैं निमित्त। किसी किसी के ही जाति स्मरण से निमित्त होता है कि देखो मैंने पूर्व में गुरु ने उपदेश दिया था या किसी ने समझाया था, किसी ने हमने नहीं माना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, ऐसा पाप किया, व्यसन किया, इसके फलस्वरूप से हम नरक में आ गए, तो इस कारण वो पश्चाताप करते हुए दुखी होते हैं, तो उनके सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, तो जाति स्मरण नाम से कारण है। नारकी जीवों के धर्म स्मरण कैसे होगा तो बताते हैं। कोई कोई सम्यक दृष्टि देव किसी नारकी को अपने पूर्व का संबंधी जान लेते हैं, कुछ ऐसी जान लेते हैं, और यदि उनको धर्म में लगाने की भावना है तो वहां जाकर के नरक में धर्मोपदेश दे करके और सम्यक ग्रहण करा देते हैं। तो ये धर्मोपदेश श्रवण है। कोई वहां मुनि जाएंगे नहीं धर्मोपदेश सुना सुनाने, मनुष्य नहीं जा सकते हैं नरक में धर्मोपदेश देने, देव ही कोई कदाचित तीसरे नरक तक जा सकते हैं, और वो भी किसी के निमित्त से, जैसे सीता के जीव ने जाकर के नारकियों को कुछ समय दर्शन ग्रहण कराया आदि, ऐसे आता है। तो बात यही है कि जाति स्मरण और धर्मोपदेश श्रवण, तो धर्मोपदेश श्रवण में यही रहा कि कोई देव जाकर के उन्हें संबोधन देकर के और समय दर्शन ग्रहण करा दे, ये धर्मोपदेश श्रवण हो गया। और कोई समयदर्शी देव किसी नारकी को अपने पूर्व का संबंधी जान लेते हैं और जाकर वहां धर्म में लगाना चाहते हैं तो धर्मोपदेश देकर समय ग्रहण करा देते हैं। और वेदना का अनुभव समय की उत्पत्ति में कारण कैसे होता है तो बताते हैं। वेदना का अनुभव सबको हो ही रहा है, प्रशिक्षण तिल तिल करें देह के खंड सुर बिणावे सुर नृत्य आदि, वहां शरीर के भले ही छिन छिन भिन्न भिन्न हो जाए फिर भी शरीर वैक्रेक है तो वो अपने आप जुड़ जाता है, पारे के समान वापस मिल जाता है और शरीर वापस बन जाता है। खंड खंड करने के बाद, आरे से चीरने के बाद, उसको कष्ट देने के बाद, कैसी वेदना वगैरह देने के बाद, घानी में पेलने के बाद भी वो शरीर में के परमाणु वापस मिल जाते हैं और उनका शरीर फिर बन जाता है और वो वेदना का अनुभव सभी कर रहे हैं। तो ये होता है ऐसा कैसे? तो कहते हैं कि वेदना का अनुभव किसी को विशेष रूप में ये समझने का कारण तब बनता है जब उनके मन में भाव आ जाए। वेदना सामान्य समय तत्ति का कारण नहीं, किंतु विशेष अमुक वेदना अमुक मिथ्यात के कारण से हुई है, ऐसी वेदना या अमुक मिथ्यात के कारण से हुई है, असंयम से हुई है आदि, तो वो वेदना असंख्या समय की उत्पत्ति में कारण बन जाती है। पूर्व में मैंने पाप किया जिसके फलस्वरूप मुझे आज यहाँ इस नरक में घोर वेदना मिल रही है, ऐसा भाव हो जाने से उस पाप का और मिथ्यात का एकदम उनके मन में बार बार जो चिंतन होता है तो उस पाप से और मिथ्यात से और डरते हैं, और डरते हैं तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ऐसे किन्हीं किन्हीं के जाति स्मरण और धर्मोपदेश श्रवण और वेदना का अनुभव, इन तीन कारणों से तीन नरक तक सम्यक की उत्पत्ति हो सकती है। ये बात विशेष ध्यान में रखने की है, तीन पृथ्वी तक ये बात है, और इसके नीचे जो चौथी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक है उनके दो ही कारण है, जाति स्मरण और वेदना का विशेष अनुभव, क्योंकि वहां देव कोई जाकर संबोधित नहीं कर सकते। तीसरे नरक के बाद चौथे नरक से लेकर सातवें नरक तक किसी देव का जाना संबोधन करना संभव नहीं है, तो वहां के नारकी कदाचित दूसरी बार अन्य इस प्रकार से जो है वहां के नारकी दो ही कारण से, जाति स्मरण से अथवा वेदना के अनुभव से समय दर्शन प्रकट कर सकते हैं। और आप ये समझे धवला आदि ग्रंथों में जो वर्णन है तो असंख्यातों असंख्यातों नारकी है सातों नरक तक, और उनमें से असंख्यातों भी आज भी असंख्यातों नारकी समय दृष्टि है, असंख्यात में भी बहुत भेद हो जाएंगे, असंख्यात में असंख्यातों भेद हो जाएंगे, तो बहुत नारकी समय दृष्टि है जिनकी गिनती नहीं है, और जो वहां से निकल निकल करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और समय दर्शन को के निमित्त से मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अनुवृत्ति महावृत्ति आदि बन करके परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो बात यही है, उदाहरण के लिए महाराजा श्रेणी ने अपने मिथ्यात के निमित्त से एक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। मुनि तो ध्यान में बैठे थे और उनके उसी समय आयुबंध की त्रिभागी आती है मनुष्य में, उस पर हम फिर कभी प्रकाश डालेंगे। सहसा हर समय आयु नहीं बनती है, उनकी आयु बंधने का समय और मुनि के गले में सर्प डालने का समय एक समान एक साथ हो गया, उन्हें आयु नरक आयु बंध गई, और कालांतर में वो भगवान महावीर के समोसरण में मुख्य श्रोता हुए और समय दर्शन प्राप्त किया, छाई समय दर्शन प्राप्त कर लिया। उसके निमित्त से उस आयु को घटाते 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 वो स्वयं झर्गता घटती है, इसे बुद्धिपूर्वक काम नहीं होता है, तो अभी 84,000 वर्ष की आयु मध्यम रूप में है, मध्यम रूप में 84,000 वर्ष की आयु कम से कम बहुत, जो कि उस सागर में सरसों बराबर, सागर में सरसों बराबर है, ऐसी आयु को प्राप्त करके और प्रथम नरक में है, और वहां से ये 21,000 वर्ष का काल चतुर्थ पंचम, और पंचम काल के बाद छठा काल भी 21,000 वर्ष का, फिर छठा काल 21,000 वर्ष का, फिर पांचवा 21,000 वर्ष का व्यतीत करके 84,000 वर्ष के बीतने के बाद वो यहाँ तीर्थंकर के रूप में जन्म लेंगे। ऐसे उदाहरण बहुत कम है, ध्यान रखें स्वर्ग से आकर तीर्थंकर होने वाले अत्यधिक हैं, स्वर्ग से अवतीर्ण होकर के तीर्थंकर बनते हैं, कदाचित कथित कोई ऐसे जीव ही राजा श्रेणी के समान ही कोई ऐसे जीव ही नरक से निकल करके तीर्थंकर पद प्राप्त करेंगे। तो भव्यात्माओं बात यही है, हमें और आपको केवल ये चिंतन करना चाहिए हमेशा कि ऐसा कोई कार्य हम अपने जीवन में ना करें गुरुओं की आसाधना का या मंदिरों की आसाधना का या जिन प्रतिमाओं की आसाधना आदि का या किसी और के हिंसा आदि कार्य ऐसे ना करें जिसे नरक आयु बन जाए और पुनः नरक में जाना पड़े। ऐसा कार्य ना करें, हमेशा ध्यान रखें, सावधान रहें, ऐसा कार्य ही करें कि जिससे आगे देवायु बंधे। समय के प्रभाव से नियम से देव ही होंगे, अनुवृत्ति महावृत्ति ये नियम है और सम्यक के नियम है, देव ही होंगे। अगर पहले आयु बांध ली है, सम्यक दर्शन हुआ है, तो अनुवृत्ति महावृत्ति नहीं बन सकते, ये बात ध्यान रखें। पहले आयु बांध ली नरक की, फिर सम्यक दर्शन ग्रहण किया, तो वो जीव अनुवृत्ति महावृत्ति नहीं बन सकता। एक बार एक सज्जन को हमारे सामने आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज प्रतिदिन 5 अनुव्रत देने के लिए कहते थे, 2 प्रथमाधारी बनने के लिए कहते थे। उनके भक्त प्रिय भक्त थे, अतिशय निकट वाले भक्त थे, बहुत ज़्यादा निकट रहते थे, हर दिन आहार आदि देते थे। तो एक दिन आचार्य महाराज के मुँह से निकला, हम लोग सब बैठे हुए थे, 56 की बात है, अरे क्या तुम्हारे नरकाय बन गई क्या, क्यों नहीं समय, क्यों नहीं अनुवृत्ति बनते। एकदम वो घबराए और जल्दी जल्दी दौड़ कर गए, नारियल लाए, बोले भगवान आचार्य श्री अनुव्रत दीजिए मुझे, 2 प्रतिमा के व्रत दीजिए। तो 2 प्रतिमा के व्रत देकर अनुवृत्ति बन करके, 2 प्रतिमा के व्रत देकर के, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रत देकर के 2 प्रतिमाधारी बन गए। तो बात यही है कि गुरुजन संबोधित करते हैं, ये नियम है कि अगर नरक आयु बन जाए तो वो अनुवृत्ति नहीं बन सकता, महावृत्ति नहीं बन सकता। हमेशा ध्यान रखें, इसलिए अनुव्रत धारण करना और अपने मानव जीवन को सार्थक करना, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल है।